परमात्म महावाक्यों से सजी ज्ञान मुरली में छिपे ज्ञान रत्नों से अपने जीवन को श्रृंगारने तथा उन अमूल्य मोतियों को स्वयं में धारण करने के लिए देखिए हमारे साथ हमारा कार्यक्रम मुरली मंथन रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ पीस ऑफ माइंड चैनल पर।
जो सत्र है वो एक महत्वपूर्ण विषय है, कर्म की गुह्य गति। ये दो बातों की गुह्य गति मानी गई है कि समय की भी बहुत गुह्य गति है, डीप सीक्रेट्स है, तो कर्म का भी डीप सीक्रेट्स है। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड भी है, कर्म और समय, और हमारी जीवन के साथ उसका बहुत गहरा संबंध है। सवेरे हमने ये बात देखी कि मनुष्य जीवन में जब भी कोई घटना आती है और ये सवाल पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ये एक पहलू हमने देखा कि समय एक बहुत महत्वपूर्ण सीक्रेट उसके सामने रिवील करने वाला है। ठीक इसी तरह जब भी ये सवाल मन के अंदर आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसका दूसरा पहलू है कर्म। और अक्सर लोग यही कहते हैं कि कर्म की गुह्य गति के कारण हमारे जीवन में ये घटनाएं हैं। मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार मेरा कार्यक्रम था बॉम्बे में और एक कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग थी। दोपहर का 3 से 5 का सेशन था तो एक परिवार वाले मेरे सामने आए जहां हम जिस सेंटर पर रुके थे और कहने लगे कि बहन जी अगर शाम का समय आपका फ्री हो तो हम अपनी कॉलोनी में एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं। हमारी कॉलोनी में बहुत अच्छे लोग रहते हैं, आध्यात्मिक विचार के लोग रहते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो शाम के समय हम एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। हमारा प्रोग्राम दोपहर को 3 से 5 था, शाम का समय हमारा फ्री था। हमने उनको कहा भले शाम तो हम फ्री है, कहा अगर हम सबको 7 बजे का टाइम दे तो चलेगा। हमने कहा भले टाइम दो। बड़े खुश होकर के वो चले गए। अब जहां हमारा कार्यक्रम था 3 से 5, 5 बजे के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हुए, कुछ लोगों से मिलना करना हुआ, तो 5:30-6 बज गए। जो बहन हमारे साथ में थी वो कहने लगी कि बहन जी अगर अब हम सेंटर पर जाएंगे और उनके बाद उनके घर जाएंगे तो एक तो ट्रैफिक का समय शुरू हो गया है और अगर कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए तो 7 बजे भी उनके घर में पहुंच नहीं पाएंगे। तो हमने कहा फिर क्या करना चाहिए, क्या यहां से डायरेक्ट अगर चले तो चलेगा। मैंने पूछा कितना दूर है, कहा बस 15 मिनट है। हमने कहा फिर तो बड़े जल्दी पहुंच जाएंगे। कहा कोई बात नहीं, अगर जल्दी भी पहुंच गए तो वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, दे वॉन्ट माइंड, खुश होंगे और ही जल्दी पहुंच गए तो। मैंने कहा ठीक है चलते। अब 6 बजे में हम उनके घर में पहुंच गए। उन्होंने इतना जल्दी तो हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो जब हम पहुंचे तो सारा परिवार बैठ करके टीवी देख रहा था। हमें जब देखा तो माता पिता ने बच्चों को इशारा किया, टीवी बंद कर दो। बच्चों ने इशारा किया, हम बंद करने वाले नहीं। आजकल तो माँ बाप की कमी चलती है बच्चों के आगे, तो माता पिता ने कहा कि अच्छा वॉल्यूम स्लो करो। बच्चे मान गए, वॉल्यूम स्लो किया। अब वहीं बैठना था, वहीं उनका ड्राइंग रूम था, वहीं वो टीवी थी, बच्चे भी वही कार्यक्रम देख रहे थे, कोई सीरियल चल रही थी। तो यहां माता पिता हमसे बात करने लगे हैं, कैसा रहा कार्यक्रम, क्या हुआ। अब उनका वॉल्यूम स्लो कराया और यहां हम बातचीत करेंगे तो उनको डिस्टर्ब तो होगा ही। आखिर उनके घर में जो सबसे छोटा बच्चा था, 10-12 साल का होगा, वो आकर मुझे कहने लगा, दीदी प्लीज डोंट माइंड, लेकिन अगर आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। बड़ी सभ्यतापूर्ण उसने मुझे कहा कि आप चुप रहिए। मुझे भी हंसी आ गई। फिर वो अपना जस्टिफिकेशन देने लगा कि ऐसा है, ये सीरियल बहुत अच्छी है और हम उसको मिस करना नहीं चाहते, और इसीलिए आप माइंड नहीं करना, क्योंकि ये आज ये सीरियल का लास्ट एपिसोड है और आज के एपिसोड में कई सस्पेंस खुलने वाले हैं, इसलिए हम उसको मिस करना नहीं चाहते, प्लीज डोंट माइंड। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप देखिए। अब वहीं बैठना था, साइलेंस में बैठना था, क्या करते। मैंने सोचा देखे तो सही इसका क्या सस्पेंस होता है। जैसे ही मैं देख रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कहानी क्या है ये भी समझ में नहीं आया, एक दृश्य का दूसरे दृश्य से भी कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन बीच बीच में पता नहीं उनका क्या सस्पेंस खुलता था। खुश हो जाते थे, कहते थे वाह बहुत अच्छा दिखाया, बहुत अच्छा दिखाया। हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या अच्छा था। एंडिंग जो थी वो भी कोई खास नहीं थी, लेकिन बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छी एंडिंग दिखाई। आखिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उस बच्चे को बुलाकर पूछा कि तुम मुझे ये बताओ इस सीरियल में क्या अच्छा लगा। एक दृश्य की दूसरे दृश्य से कोई कनेक्शन नहीं और कहानी क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर क्या अच्छा लगा। वो बच्चा मुझे कहने लगा, दीदी आपने सारे एपिसोड नहीं देखे ना, इसलिए आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमने तो सारे एपिसोड देखे हैं ना, इसलिए हमें समझ में आ रहा था कि ये दृश्य का कनेक्शन कौन से एपिसोड के साथ है, और इसीलिए हम उसको रिलेट कर पा रहे थे तो अच्छा लग रहा था। इतना बोलकर वो चला गया, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे समझा के गया कि ये 5000 साल के चक्र के अंदर हमारे भी कितने जन्म होंगे, और एक एक जन्म एक एक एपिसोड है। अब ये लास्ट एपिसोड है, जीवन के अंदर भी कई दृश्य ऐसे होते, एक दृश्य का कनेक्शन दूसरे दृश्य से नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं पिछले एपिसोड्स के साथ, हम बड़े दुखी हो जाते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन इसका कनेक्शन कोई ना कोई एपिसोड के साथ तो है। अगर हमें भी सारे एपिसोड्स याद होते थे तो क्या कहते थे, हम भी यही कहते थे वाह बहुत अच्छा है। हर दृश्य जीवन के अंदर उसका आनंद ले पाते थे, वाह कितना अच्छा ये है। लेकिन क्योंकि हम नहीं जानते, भूल चुके हैं सारे एपिसोड्स, और इसीलिए वर्तमान जीवन को खाली हम देखते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं और कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्यों हुआ। लेकिन इसका कनेक्शन कोई न कोई एपिसोड में तो है। तो कितने एपिसोड्स है? वैसे भारत के अंदर कहा गया है कि मनुष्य आत्मा को 84 लाख योनियां लेनी पड़ती है और 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। अब सोचने की बात यह है कि आज अगर 5000 साल का चक्र हो, एक काल चक्र, और उसमें 84 लाख जन्म हमें लेने हो तो आयुष्य कितना होगा? कोई हिसाब बैठता है? कोई हिसाब ही नहीं है। तो क्या इन सब योनियों में से हम गुजरते हैं? कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये सब योनियों में से हमें गुजरना पड़ता है? सबसे पहली बात, हाँ, संसार में 84 लाख योनियां जरूर है, लेकिन आज हम आपको एक खुशखबरी देते हैं कि हमें सब योनियों से गुजरना नहीं पड़ता है। मनुष्य आत्मा पुनर्जन्म मनुष्य योनि में ही लेता है, मनुष्य योनि में ही रह करके हमें अपने कर्मों का फल भोगना है। कैसे? क्योंकि सोचने की बात है कि अगर हमने बुरे कर्म किए और अगर हमें 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ा और सारी योनियों में से गुजरने के बाद जब मनुष्य जीवन मिला तो हर रीति से परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्शन, क्योंकि सब कर्मों का फल तो भोग के आए ना। फिर ये ऊंच नीच, एक बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ और एक बच्चे को दूध भी नसीब नहीं, अब जन्मते उसने कौन सा कर्म किया? आजकल तो सुना है कि बच्चा वूम्ब में है और उसकी हार्ट सर्जरी होती है। अब जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, कोई कर्म ही नहीं किया, फिर ये कौन सी कर्मों की भोगना है? और इसीलिए फिर तो सब एक समान होने चाहिए, लेकिन अगर ये ऊंच नीच हम ये आगे पीछे जीवन के अंदर जो हम कुछ देखते हैं, हर एक के जीवन में इतने डिफरेंसेस है, ये कौन से कर्म का फल है? तो 84 लाख जन्म की बात जो शास्त्र में आई, क्या वो सही नहीं है? क्या हुआ कि मनुष्य आत्मा को जब हिसाब पता ही ना हो तो क्या कह देता है? कभी कोई छोटे बच्चे को अगर बहुत बड़ा हिसाब हम सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो वो भी कंफ्यूज होकर कहता है ये होता ही नहीं है, या अपने तरीके से वो जवाब दे देगा। ठीक इसी तरह मनुष्य आत्मा जब कंफ्यूज हो गए मनुष्य जीवन के बारे में, तब उन्होंने चाहे डराने के लिए ताकि कोई बुरा कर्म न करे इसलिए कह दिया जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि मिलेगी, वैसा बनना पड़ेगा और 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ेगा ताकि कोई हिसाब ही नहीं देना पड़े। शास्त्र के अंदर जो लिखा है वो है लक्ष्य 84, और लक्ष्य के दो अर्थ होते हैं, एक लक्ष्य माना लाख और दूसरा लक्ष्य माना स्पेसिफिक, वही जन्म। अब सिर्फ 84 जन्म कहे तो हिसाब देना पड़े कि कैसे हमने 84 जन्म लिए, वो हिसाब किसी के पास है नहीं, इसलिए मनुष्य ने कह दिया 84 लाख और वो भी जैसा कर्म करो वैसी योनि मिलेगी। और इसी तरह से एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया कि अगर मनुष्य ने हिंसक कर्म किया तो दूसरे जन्म में उसको हिंसक योनि में जाना पड़ेगा, जहां उसका जीवन हिंसा के बल पर ही चलता। अब ये कहां तक एप्रोप्रिएट है, सोचने की बात है कि मान लो कि मैंने हिंसा किया और उसके फल स्वरूप मुझे हिंसक योनि प्राप्त हुई, उस योनि में मुझे जाना पड़ा, वाघ बनना पड़ा, सिंह बनना पड़ा, जहां हमारा गुजारा ही अगर हिंसा के आधार पर हो तो वहां मेरे संस्कारों का परिवर्तन होगा या मेरे संस्कार और मजबूत बनेंगे हिंसा के? क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है? और मजबूत बनेंगे। फल उसको कहा जाता है कि जहां एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये गलत है और हम न करें आगे के लिए, उसमें से शिक्षा ले लें। बाकी जहां वह संस्कार अगर और मजबूत हो रहा हो तो कर्म का हिसाब कैसे हुआ? मुझे याद आता है कि एक बार यहां पर, जैसे ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, ऐसे एक बार एक जूरिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। काफी जज वकील अलग अलग स्थानों से आए थे भारत के, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑनरेबल कृष्णा अय्यर जी पहुंचे थे ऐसी कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही अपने लेक्चर में कि हम लोग जजमेंट कैसे देते हैं। तो कहा, हमारे सामने कोई क्रिमिनल आता है, उसकी सुनवाई होती है, और सुनवाई होने के बाद जिस कॉन्सिक्वेंसेस में आकर के उसने वो गुनाह किया होता है, उसको सुनने के बाद उसका जजमेंट देते हैं। मान लो कि एक चोर आया और उसकी सारी सुनवाई हुई, और वो सुनवाई के बाद हम उसको जजमेंट दे देते हैं कि भाई ये चोरी किया, जिस प्रकार की चोरी होती है उस अनुसार उनको सजा मिलती है, भाई 6 मास की, 3 मास की, जैसे भी हो। एक खूनी आया, खूनी ने किस कॉन्सिक्वेंसेस में आकर वो खून किया था, उसकी सुनवाई हुई और उसके हिसाब से उसको सजा सुना देते, जजमेंट दे देते हैं, भाई उसको आजीवन कारावास या उसको फांसी की सजा या उसको उम्र कैद, इस तरह से हम सजा दे देते हैं। और हम समझते हमारा काम पूरा हो गया, और वो चोर को वहीं भेजा जाता है जहां और चोर होते हैं, वो खूनी को वहीं भेजा जाता है जहां और खूनी होते हैं। अब वो जब वहां जाता है, जो चोर को भेजा गया जहां और चोर है उस डिपार्टमेंट में उसको भेजा गया, तो वहां जाने के बाद उनकी आपस में बातचीत क्या होती है? लाइक माइंडेड मीट, लाइक माइंडेड पीपल, व्हेन दे मीट व्हाट हैपेंस, दे बिकम फ्रेंड्स, वो आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं, स्वागत करते हैं उनका, सहानुभूति दिखाते हैं, वैल्यूज बहुत अच्छी काम करती है वहां पर, उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं और उसके पास में बैठ करके पूछते हैं, भाई क्या हुआ तेरा? खूनी को वहां भेजा गया जहां और खूनी है, वो भी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दर्शाते हैं और पूछते हैं, भाई क्या हुआ तेरा, कैसे तुमने खून कर दिया? और जब उसकी कहानी सुनते हैं तो जहां समानता होती है विचारों की या गुनाह की भी समानता होती है, वो लोग आपस में दोस्त बन जाते हैं। और दोस्त बनने के बाद क्या कहते हैं, जब दोस्त बन गए, उनका टीम वर्क बहुत सुंदर क्रिएट हो जाता है। हम लोगों का, समझदार लोगों का टीम वर्क इतना अच्छा क्रिएट नहीं होता है, लेकिन उन लोगों का टीम वर्क बहुत अच्छा बन जाता है। वो ऐसे दोस्त बन जाते हैं कि बाहर निकलने के बाद एक दूसरे का इंतजार करते हैं। एक चोर बाहर निकला तो अपने दोस्त का इंतजार करता है, बाहर में उनका टीम वर्क जो बना होता है उसमें उसको भी शामिल कर लेते हैं, और शामिल करने के बाद या वहां पर ही जेल में ही वो एक दूसरे को ऐसी टेक्निक सिखाते कि ऐसा करता था ना तो तुम पकड़ा नहीं जाता था, ये करना चाहिए था तुमको, तो एक दूसरे को टेक्निक सिखाते हैं। माना वो चोर जब बाहर निकलता है तो और पक्का चोर होके निकलता है, और पक्का खूनी होकर के निकलेगा कि दोबारा वो पकड़ा ही नहीं जाएगा, या उनकी टीम वर्क ऐसी बन जाती है जो वो टीम कभी पकड़ी नहीं जाती है। और इस तरह समाज में गुनाह बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। क्या भगवान का भी सजा देने का, जजमेंट देने का यही तरीका है कि अगर किसी ने हिंसा किया तो उसको हिंसक योनी में भेज दो, जहां हिंसा के संस्कारों का रियलाइजेशन नहीं है, और ही वो हिंसा के कर्म बढ़ते जाते हैं तो सजा कैसे मिली? सजा तो मिली ही नहीं। तो इसलिए भगवान का सजा देने का ये तरीका नहीं है, ये इंसानों के सजा देने के तरीके। और इसलिए समाज में कृष्णा अय्यर जी ने बहुत अच्छी बात कही, गुनाह बढ़ता ही जाता है और कहीं ना कहीं हम उसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमारा जजमेंट सही नहीं है। क्या उनका रिहैबिलिटेशन नहीं किया जाता है, जहां उनको अच्छे संग मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छी बातें मिले, अच्छा माहौल मिले, जो वो सुधर सके और अपनी गलतियों का एहसास हो सके? इसलिए कहा भगवान का सजा देने का ये तरीका नहीं है, लेकिन मनुष्य योनि में रह करके ही वो अपने कर्मों का फल भोगता है। हाँ, ये जरूर है, जानवर योनि में नहीं जाना पड़ता है, जानवर जैसा जीवन बन जाता है या जानवर से भी बदतर जीवन हो जाता है। क्या आज एक जानवर को भी हम देखते हैं कीचड़े के डब्बे में से खाना खाते हुए, और एक मनुष्य को भी वहीं से खाना ढूंढते हुए हम देखते हैं, और जानवर भी उसको हड़काते हैं। वो मनुष्य हड़का रहा था जानवरों को, जब खाना लेने के लिए वो मनुष्य वहां जाता है तो जानवर उसको हड़काते हैं। भावार्थ ये, जानवर से भी बदतर जीवन हो जाता है, जानवर योनि में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको। दूसरी बात के हम ये क्यों समझे कि जानवर योनि एक भोगना की योनि है? भोगना की योनि कौन सी लग रही है, मनुष्य योनि लग रही है या जानवर योनि लगती है? आज पशु पक्षियों को देखो, कितना मौज कर रहे हैं। पक्षी जब उड़ रहे हैं, है कोई टेंशन? मनुष्य को कितना टेंशन? तो भोगना की योनि कौन सी है, जानवर योनि या मनुष्य योनि? हाँ, तो ये हम सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी में से निकाल दे कि जानवर बनना पड़ता है क्योंकि जानवर योनि भोगना की योनि है। नहीं, जानवर योनि भोगना की योनि नहीं है। बड़े मस्त रहते हैं जानवर। आज एक कुत्ता मोटर गाड़ी बंगले में घूम रहा है, दूध ब्रेड खा रहा है, वो भोगना की योनि कहेंगे क्या? भोगना की योनि नहीं है। भोगना की योनि तो मनुष्य है, जो मालिक शायद होते हुए भी डायबिटीज के कारण कुछ नहीं खा सकता हूं, और वो जानवर खा रहा है उसके पास में बैठ करके, और वो मनुष्य कुछ नहीं खा सकता है ऐसी कोई बीमारी के कारण। तो भोगना की योनि कौन सी हुई, मनुष्य योनि हुई कि जानवर योनि हुई? तो सबसे पहले हम ये बैरियर अपने मन से निकाल दे कि जानवर योनि भोगना की योनि है। जानवर योनि भोगना की योनि नहीं है, भोगना की योनि मनुष्य योनि है। कि आज एक छोटे बच्चा जन्म लेते ही कई बार कई प्रकार की बीमारियों का शिकार बनता है, और जीवन भर जीवन पर्यंत उसको उस भोगना का अनुभव करना पड़ता है। तो इसलिए कहा भोगना की योनि शायद जानवर योनि नहीं है, मनुष्य में चारों रूप से भोगना भोगनी पड़ती है, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है तो सामाजिक रूप से भी। आज किसी को बीमारी आई, आज कई बार मनुष्य सुसाइड करते हैं। कभी सुना कोई जानवर ने सुसाइड किया? क्या मनुष्य अपने जीवन में इतना तंग हो चुका जो जीवन का अंत कर देना चाहता है? क्या ये भोगना नहीं है? जो तनाव से वो गुजरता है, जो डिप्रेशन से वो गुजरता है, क्या ये भोगना नहीं है? हर रीति से भोगना है, मानसिक भी है, शारीरिक भी है। जानवरों को शायद एक शारीरिक रूप भोगना से गुजरना पड़ेगा, मानसिक भोगना से तो नहीं। उनको कोई प्रकार का टेंशन नहीं। हार्ट अटैक मनुष्य को आता है, कभी कोई जानवरों का हार्ट फेल हुआ या हार्ट अटैक आया नहीं। भावार्थ ये कि मनुष्य योनि ही भोगना की योनि है, जानवर योनि नहीं। और कहा जाता जैसा बीज वैसा फल। आज अगर आम का बीज डालो धरनी के अंदर तो उसमें से पपीता खाने को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? धरनी वही है, खाद वही है, पानी वही है, हवा वही है, सब कुछ तो वही है, फिर एक बीज से दूसरा फल क्यों नहीं निकलता है? तो क्या कहेंगे? हर बीज की जो विशेषता है अपनी अपनी है, इसलिए एक बीज से दूसरा फल नहीं मिलता है। भले बाजू बाजू में लगाया जाए तो भी एक बीज से दूसरा फल नहीं निकलता है, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स अपने अपने हैं। ठीक इसी तरह आत्मा भी एक बीज है, जानवरों की आत्मा का भी बीज है, लेकिन जिस बीज को जिस योनि में भगवान ने रोपित कर दिया, अब मनुष्य योनि में रोपित कर दिया तो वो जानवर कैसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? जब पांचों तत्व वही है तो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हर बीज की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स अपने अपने हैं। जो मनुष्य आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जानवर आत्मा के नहीं है, और जो जानवर आत्मा के हैं वो मनुष्य आत्मा के नहीं है। इसलिए मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ने के बाद पुनः मनुष्य शरीर में ही प्रवेश करता है, क्योंकि उसकी विशेषता ही अपनी अपनी है। कौन सी विशेषता है? मनुष्य आत्मा की विशेषता कि वो लंबा सोच सकता है, 10 साल का सोच सकता है। उसके बच्चे के बच्चे क्या खाएंगे उसका भी सोच करके इकट्ठा कर सकता है। जानवर शाम को क्या खाना है वो भी नहीं सोचता है, उसकी सोचने की शक्ति बहुत लिमिटेड है, उसकी समझने की शक्ति लिमिटेड है। मनुष्य बहुत कुछ समझ लेता है, जो ना समझना चाहिए वो भी कभी कभी समझ लेता है, है ना? तो मनुष्य की जो मानसिक और बौद्धिक क्षमता है वो जानवर से कई गुना अधिक है। लेकिन जो जानवर आत्मा की विशेषता है वो मनुष्य की नहीं है। उनमें कौन सी विशेषता है? तो आज अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आने वाली होती है तो जानवरों को पहले पता चलता है। भूकंप होने वाला होता है तो जानवरों को पहले पता चलता है, पशु पक्षियों को पहले पता चलता है, मनुष्य को पता नहीं चलता है, लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज होने के बाद भी। आज एक तुरंत जन्मा हुआ गाय का बछड़ा होता है, पानी में रख दो तैर के उस तरफ चला जाएगा, मनुष्य आत्मा के बच्चे को रखो डूब जाएगा। तो जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे में नहीं है, जो हमारे में है वो उनमें नहीं। इसलिए हर बीज की विशेषता ही अपनी अपनी है, और जब अपनी अपनी है तो हर एक अपनी योनि में ही बहुत खुश भी है। कई बार कई लोग हमें पूछते हैं, क्या जानवरों को भी कभी मन नहीं होता होगा क्या मनुष्य बने? हम एक ही सवाल कहते हैं, आपको कभी मन होता है जानवर बने? जब आपको मन नहीं होता है तो उनको कहां से मन होगा? हर आत्मा अपनी अपनी योनि में बहुत खुश है। आप कहेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि जानवर अपनी योनि में, कीड़े मकोड़े अपनी योनि में बहुत खुश है? खुश है। आज अनाज में जब कीड़े पड़ जाते हैं और वो अनाज को आप धूप में रखो तो वो कीड़ा भी अपनी जान बचाने लिए भागता है छांव में। क्यों? यही बताता है कि उसको अपनी योनि बहुत प्रिय है, इसीलिए वो जान बचाने लिए भाग रहा है। आज मनुष्य कितना भी दुखी हो, कितने भी उसके जीवन में तकलीफ हो, और मान लो कि भगवान ने आकर के पूछ लिया, भाई तुम मनुष्य योनि में इतनी तकलीफ को भोगना को अनुभव कर रहा है, क्या दूसरा जन्म तेरे को कोई कीड़ा मकोड़ा बना दे? तो क्या कहेगा मनुष्य? नहीं, इतनी तकलीफ अनुभव करने के बाद भी वो यही चाहेगा कि मैं दोबारा मनुष्य ही बनूं। तो मनुष्य अपनी योनि में खुश है, पशु पक्षी अपनी योनि में खुश है, कीड़े मकोड़े अपनी योनि में खुश है ना? इसलिए हमें दूसरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या उसका कभी उद्धार होगा नहीं, उसको कभी मोक्ष। कई लोग दूसरों की ज्यादा चिंता करते, जानवर आत्मा का क्या होगा? अरे तुम अपना सोचो ना कि हमारी आत्मा का क्या होगा, हम आत्माओं का क्या होने वाला, वो नहीं सोचते हैं। जानवर आत्मा का क्या होगा, है ना? आप अपना सोचिए, अपने कर्म अच्छा करो तो आपको बाकी सबके कर्म का भी समझ में हिसाब किताब आ जाएगा। अपने हिसाब किताब को समझे हम। और हर आत्मा अपनी योनि में बहुत खुश है, मनुष्य से भी ज्यादा खुश है। एक बार हमने कार्टून देखा कि तीन बंदर आपस में बात कर रहे हैं, तो पहले बंदर ने दूसरे बंदर से कहा कि सुना है कि मनुष्य कहता है कि वो हमारी वंशज है। तो दूसरे बंदर ने कहा, क्या कहा? मनुष्य की प्रमोशन हो गई क्या? तो तीसरे बंदर ने कहा, मैं तो उनको कभी भी अपनी वंशज के रूप में स्वीकार न करूं। बहुत बड़ा कटाक्ष था ह्यूमन मेंटालिटी, ह्यूमन एटीट्यूड पर, कि आज बंदर भी हमें अपने वंशज के रूप में स्वीकार करने लिए तैयार नहीं है, है ना? वो बंदर कहने लगे कि हम आपस में कितना प्यार से रहते हैं, हमने कभी एक दूसरे का खून नहीं किया, ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, इसको हमारी वंशज कहेंगे? हमारे तो ये संस्कार नहीं है कि हम आपस में एक दूसरे को खत्म कर दे। हम कितना प्यार से रहते हैं। यहां से माउंट आबू जाएंगे ना, रास्ते में आपको बहुत बंदर मिलेंगे, है ना? बहुत यूनिटी है, झुंड में ही रहते हैं वो, बहुत प्यार से रहते हैं, कभी एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। इसलिए कहा कि मनुष्य की मनोवृत्ति के ऊपर एक बहुत बड़ा कटाक्ष था कि आज मनुष्य एडवांसमेंट के नाम पर कहां पहुंच गया है। एक दूसरे का खून का प्यासा, इतनी नफरत और जहर भरा है अंदर में, और उससे तो ये जानवर पशु पक्षी अच्छे हैं। एक बार हम माउंट जा रहे थे, हमने देखा एक ट्रक आ रही है और वो बंदर उछल कूद कर रहे थे, तो उछल कूद करने में एक बंदर को वो ट्रक का जोर से आगे का हिस्सा लगा और वो एकदम गिर गया, बेहोश हो गया। हमने देखा, गाड़ी खड़ी किया हमने, हमने देखा कि थोड़ी देर में ही सारे बंदर कूद कूद करके वहां पहुंच गए, उस जगह पर पहुंच गए। उसके पास में जाकर के बैठा और देखे, उसकी सांसें चल रही है, बेहोश हुआ है, उनको अपनी डॉक्टरी अपने हिसाब से होगी, उनको पता चल गया कि अभी तक ये होश में है, ये मरा नहीं है। सब लोग वहां बैठे रहे ताकि कोई दूसरा वाहन उसके ऊपर से अपना पहिया चला के चला न जाए। ये बंदर है। आज मनुष्य का अगर कहीं रास्ते में एक्सीडेंट होता है, कोई खड़ा भी रहता है? खड़ा भी रहता है? अरे कहां पुलिस केस में फंसेंगे, चलो चलो निकलो यहां से। ये मनुष्य है, वो बंदर है और ये मनुष्य है, कितना अंतर है। इसलिए कहा कि आज मनुष्य की मनोवृत्ति क्या बन गई है, और वहीं वो जानवरों की मनोवृत्ति देखो। एक को लगा है तो चारों तरफ लोग बैठ गए ताकि कोई दूसरा वाहन उसके ऊपर से पहिया घुमा के जाए नहीं। जब तक उसको होश न आया तब तक वो बैठे रहे वहां पर। उनकी अपनी तरह से जड़ी बूटियां लगाई होंगी, या जो हम तो खड़े नहीं रहे, फिर बाद में चले गए। लेकिन ये दृश्य देख करके लगा कि हमसे तो ये बंदर अच्छे हैं, कि आज रास्ते में अगर किसी को लगता है तो कोई उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में मदद नहीं करता है। ये मनुष्य है। इसलिए कहा कि जहां बंदर भी आपस में कहते क्या मनुष्य की प्रमोशन हो गई, प्रमोशन हो गई माना क्या सुधर गया, मनुष्य अच्छा बन गया क्या, जो बंदर की वंशज कहने लगा। और आजकल तो वैज्ञानिक रूप से भी ये सिद्ध होने लगा है, कई प्रकार के रिसर्च हो रहे हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस के माध्यम से। और जब भी कोई किस्सा हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि किसी को अपना पूर्व जन्म याद आया, तो आज दिन तक किसी ने ये नहीं बताया कि मैं जानवर से मनुष्य बना हूं, कीड़े मकोड़े से मनुष्य बना हूं। आज दिन तक जितने भी ऐसे किस्से हुए हैं, मनुष्य का ही मनुष्य रूप में बताया गया है। और अब तो टीवी पर भी राज पिछले जन्म का आ रहा है, उसमें भी किसी ने ये नहीं बताया कि मैं कोई जानवर था और मनुष्य बना हूं। हर एक ने यही बताया कि मनुष्य से मनुष्य बना हूं। किसी ने भी ये नहीं बताया कि मैं जानवर से, कीड़े मकोड़े से मनुष्य बना हूं। अमेरिका के अंदर डॉक्टर रेमन मूडी उस पर काफी रिसर्च कर रहे हैं, और इन रिसर्च के आधार पर उनकी डॉक्टर्स की टीम में हमारे भी एक डॉक्टर है जो बीके से जुड़े हुए हैं। और उनकी लेटेस्ट रिसर्च पर जब भी वो यहां इंडिया में आते हैं, माउंट आबू आते हैं, तो वो स्लाइड्स लेकर आते हैं बताने के लिए कि क्या रिसर्च हुआ है। तो उन्होंने बताया कि अब तक करीबन 3 लाख केसेस पर उसने रिसर्च किए, हिप्नोटाइज करके उनको पूर्व जन्म में ले जाते हैं, और ले जाकर के पिछले जन्म के कुछ सवाल पूछते हैं, और वो सवालों का जो जवाब है, उनकी टीम में हर प्रकार के डॉक्टर्स रखे हैं, स्पेनिश जानने वाले, इंग्लिश तो वो खुद ही, स्पेनिश जानने वाले, इंडियन भाषाओं को जानने वाले, क्योंकि जब उनको पिछले जन्म में ले जाते हैं तो वो उस जन्म की भाषा बोलने लग जाते हैं। कैसेट रिवाइंड हो गई तो जो गाना वहां होगा वही बजेगा। तो इसीलिए उसने कहा कि 1,65,000 केसेस की भाषा वो समझ पाए, बाकी की भाषा समझ नहीं पाए। लेकिन उसने कहा कि जो भाषा हम समझ नहीं पाए वो भी मनुष्य बोली थी, कोई जानवर बोली नहीं थी। ये दुनिया में तो कितनी भाषाएं होती है, कौन आत्मा कहां से आई है पता ही नहीं। लेकिन जिनकी भाषा समझ में आई, और जहां वो रिसर्च के हिसाब से नजदीक अगर कांटेक्ट करने जैसा होता था वो वहां जाते थे, और वहां उन लोगों से पूछते थे, ऐसे नाम का कोई व्यक्ति यहां रहता था, उनसे कुछ सवाल जवाब करते और वो डेटा को मैच करते और देखा गया कि जिन जिन डेटाओं को उन्होंने मैच किया सब बातें जो बताई गई थी वो सही थी और उसके आधार पर कई बीमारियों को वो ठीक कर रहे हैं जो साइकोलॉजिकल कैरिड फॉरवर्ड है, जैसे भय का, दर्द का, कई बीमारियां जो पिछले जन्म से कैरिड फॉरवर्ड है उसको ठीक किया गया। एक बहन का किस्सा बताया, उसको बहुत कमर दर्द था, हमेशा ये कंप्लेन करती थी कि मेरा कमर दर्द बहुत है, पूरी बैक पेन है, बैक पेन है। काफी डॉक्टर्स को उसने दिखाया, जो भी उनका चेकअप करते थे यही कहते थे आपकी कमर बैक आपकी एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैक में। कई प्रकार के एक्सरेज निकाला, कई प्रकार के टेस्ट कराए, लेकिन हर डॉक्टर यही कहता आपकी कमर नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसको दर्द महसूस होता था। आखिर वो डॉक्टर रेमन मूडी, आप उसकी साइट पर भी जा सकते हैं और ये साइट पर भी देख सकते हैं, काफी वीडियोस भी उसने रखी हुई है साइट के ऊपर। तो जैसे ही वो यहां गई और उसको हिप्नोटाइज किया गया, पिछले जन्म में ले गए और पूछा कि भाई आप, कई क्वेश्चंस पूछे, लास्ट में उनको पूछा कि उस जन्म में आपकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो कहा कि बहुत भयंकर कार एक्सीडेंट में हुई और उस कार एक्सीडेंट में पूरी बैक उसकी स्मैश हो गई और जो दर्द उसको था मरते समय, इतना भयंकर दर्द था और उसी दर्द में उसने शरीर छोड़ा। तो जैसे भारत में कहावत है, अंत मते सो गते, अंतिम समय जो विचार को लेकर के शरीर छोड़ता है उसका अनुभव दूसरे जन्म में भी वो करता रहता है। इसीलिए मरने वाले की हमेशा अंतिम इच्छा पूछी जाती है ताकि वो उन विचारों को लेकर के शरीर न छोड़े। अब इस जन्म की कमर उसकी एकदम ठीक है, लेकिन वो पिछले जन्म का जो दर्द है साइकोलॉजिकली कैरिड फॉरवर्ड, वो महसूसता उसको आती रहती है। जब उसे पता चला कि ये पिछले जन्म के कमर का जो दर्द है, एक्सीडेंट हुआ था उसका दर्द है, ठीक हो गई। ऐसे कई किस्से सॉल्व किए गए। ये तो जो डॉक्टर हमारे पास आते हैं उस टीम से काफी अच्छी अच्छी बातें उनके लेटेस्ट रिसर्च की बताते हैं। और अभी जो लास्ट में आए थे, एक बहुत सुंदर रहस्य उन्होंने खोला कि उन्होंने अधिकतर लोगों से ये पूछा कि पिछले जन्म आपने जब शरीर छोड़ा था उसके बाद कहां गए थे, कोई भगवान नाम की चीज है?